ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਉਹ ਨੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਘੱਟ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਘੱਟ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭੇਦ ਅਭੇਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੀ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਣੀ ਮੇ ਵਾਚਕ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਚੇ ਜਾਂ ਤੇ ਭੇਦ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਮੇ ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਆ। ਅਬ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਸ ਕੀਤਾ, ਨਿਚੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰ ਰਸ ਸਾਰ ਤੱਤ ਗ੍ਰਾਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਮੈਂ, ਸੁਰਤੀ ਮੈਂ ਵੇਦ ਮੈਂ, ਜੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਵੇਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮੰਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪ, ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੁਰਤੀ ਮੈਂ ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਪ੍ਰਣਵ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਕਹਿਓ ਜੋ ਭੇਦ ਅਭੇਦ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਰਹੱਸ ਕੁਛ ਲਿਖਿਓ ਨਾ ਭੱਟਸੂ ਭੇਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਵ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਣਵ ਮਾਨੇ ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਣਵ ਅਕਸ਼ਰ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਕਹਿਓ ਜੋ ਭੇਦ ਅਭੇਦ, ਪ੍ਰਣਵ ਕਾ ਓਮ ਕਾ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਭੇਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਭੇਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਰਹੱਸ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗੋੜ ਅਭਿਪਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਲਖਿਓ ਨਾ ਭੱਟ ਸੂ ਭੇਦ, ਉਹ ਭੱਟ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭੇਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਓਮ ਕਾ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਗਾ, ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲੀ ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਘੜੇ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਏਗਾ, ਐਸੇ ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਣਵ ਕਹੀਏ ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਜੋ ਵੇਦ ਮੇ ਅਭੇਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਵ ਮਣੇ ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਜੋ ਵੇਦ ਮੇ ਅਭੇਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਦ ਵਚਨ ਕਾ ਵਾਚਕ ਕੇ ਅਭੇਦ ਮੇ ਤਾਤਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਤਾਂ ਮੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਰਹੱਸ ਕਹੀਏ, ਗੋਪੀ ਅਭਿਪਰਾ ਹੈ, ਗੋਪਨੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਬਾਤ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਭੇਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੋ ਭੇਦ ਕਹੀਏ ਅਭਿਪਰਾ ਭੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੱਟ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂ ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਬ ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਜਹਾਂ ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਾਚੇ ਕਾ ਔਰ ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਅਭੇਦ ਮੇ ਤਾਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਤਪਰ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਓਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਓਮ ਅਕਸ਼ਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਸਕੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਉਪਾਸਨਾ ਔਰ ਉਪਾਸਨਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਵਸਤੂ ਕੈਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੀ ਹੋਗੀ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਪਾਸਨਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਾਸਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਅਰਥ ਮੇ ਤਾਤਪਰ ਹੈ, ਉਪਾਸਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਾਸਕ ਕੇ ਸਰੂਪ ਕਾ ਜਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਧਾਨ ਕਰੀ ਹੈ ਤੈਸਾ ਹੀ ਉਪਾਸੇ ਕਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਧਾਨ ਕਰੀ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਉਪਾਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है ना, किंतु जैसी वस्तु जैसा वस्तु का स्वरूप है ताकु त्याग के अन्य स्वरूप की भी ताके विषय उपासना करिए है। जैसा वस्तु का स्वरूप है, शालिग्राम देखा किसी ने, नर्मदेश्वर देखा किसी ने, नर्मदेश्वर हाँ दर्शन कराए सी ना, तो की लगता तानू देश्वर हाँ दर्शन कराए सी ना, तो की लगता तानू पत्थर। तो शास्त्र की कह रहा है, शास्त्र कह रहा है साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। अब जे तुसी उनू रख के नर्मदेश्वर नू जा शालिग्राम नू, शालिग्राम विष्णु का स्वरूप मनिया गया है, गंडिका नदी है एक नेपाल दे विच, उहदे चो निकलदे हो। तो यह जिहड़ा नर्मदेश्वर है नर्मदा नदी चो जिहड़ी अमरकंठ तो चल के निकलती है उहदे उहदे चो निकलदे पत्थर। तो वह जो तुसी उनू सामने रख के उपासना करोगे तो रख्या की सामने तुसी पत्थर, तो उपासना के दी कर रहे भगवान शंकर दी, वो शंकर दा स्वरूप नहीं है, पत्थर है वो, वो प्रतीक है जिसे तुसी हाँ जिसे तुसी आजादी दे दिन विच जदों झंडा हिलाउंदे ते की कहिंदे हो, वो झंडा नहीं आंदे लाल किला जिहड़ा आजादी दा प्रतीक नहीं है, लाल किले ते लड़ाउंदे आ ना आंदे ये आजादी का प्रतीक नहीं है, क्यों ते मुसलमान ने बनाया ते गुलामी दा प्रतीक है, है ना। यही कहिंदे आ ये लाल किला आजादी का प्रतीक नहीं है, ये झंडा आजादी का प्रतीक है। इस वा वो जिहड़ा शालीग्राम तुसी रख्या है जां नर्मदेश्वर रख्या है वो भगवान शंकर का प्रतीक है, स्वरूप नहीं है। तो तुसी वो पत्थर नूं त्याग के भगवान शंकर का ध्यान कर रहे जे तो उपासना हो रही ठीक हो रही है। हाँ प्रतीक है वो, मतलब उपासना तुसी जो अगे रख्या उहदे तो विपरीत भी कर सकते जी, ठीक है ना। जैसे देखो अब दृष्टांत दे रहे, जैसे शालिग्राम और नर्मदेश्वर की विष्णु रूप और शिव रूप करके उपासना कही है, शालिग्राम तो विष्णु का स्वरूप हो गया भगवान विष्णु का, और नर्मदेश्वर भगवान शंकर का स्वरूप हो गया, तो है कि दोनों पत्थर। तो सामने तुसी रख्या पत्थर, तू उपासना कि कर रहे विष्णु की, विष्णु का स्वरूप है चतुर्भुज, चार भुजा, शंख चक्कर गदा पदम हाथ में, उहदे च वनमाला कंठ में है, ऐसा पत्थर का स्वरूप तो नहीं है। तो उन्हों त्याग कर तुसी विष्णु की उपासना कर रहे जे, ठीक है ना। जैसे शालिग्राम और नर्मदेश्वर की विष्णु और शिव रूप करके उपासना कही है, तहां शंख चक्र आदि के सहित चतुर्भुज मूर्ति शालिग्राम की नहीं है, और गंगा भूषित जटाजूट डमरू चमर कपाल सहित भद्रा मुद्रा से शरणागत कु त्रिगुण रहित आत्मा का उपदेश करने वाली मूर्ति नर्मदेश्वर की नहीं है, किंतु दोनों शिला रूप है, दोनों पत्थर है, ठीक है ना। और शास्त्र की आज्ञा ते तीन शिला रूप की दृष्टि त्याग के दोनों विषय कर्म ते विष्णु रूप और शिव रूप की उपासना कहिए है, जाते उपास्य के स्वरूप के अधीन उपासना नहीं होवे है, किंतु विधि के अधीन होवे है। जैसा उपास्य का स्वरूप है उदय अधीन नहीं, विधि दे अधीन है, विधान वेद विधान कर रहा है, ये नर्मदेश्वर जोड़ा है ये भगवान शंकर का स्वरूप है, ये शालिग्राम है ये भगवान विष्णु का स्वरूप है, तो आप उपासना करी कर रहे हैं पत्थर दी, तो विधि के दी हुई आप की कर रहे हैं। फिर उपासना पुरुष दे अधीन है, वस्तु दे अधीन नहीं, वस्तु तो पत्थर है पई अगे, ऐसे उपासना करें। जैसे छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या प्रकरण में स्वर्गलोक मेघ भूमि पुरुष और स्त्री इन पांच पदार्थों की अग्नि रूप करके उपासना कही है, और श्रद्धा सोम वर्षा अन्न और वीर इन पांच पदार्थों की पंच अग्नि की उहुति रूप उपासना कही है, तहां स्वर्ग आदि अग्नि नहीं है, स्वर्ग दी अग्नि रूप करके उपासना कही है, स्वर्ग अग्नि थोड़ी है, तो जड़ी उहुति देनी वह कहते देनी श्रद्धा रूपी उहुति, तो श्रद्धा को उहुति थोड़ी है, उहुति तो किसी द्रव्य समग्री दी होएगी, तो ये फिर मानसिक उपासना है, ठीक है ना। और श्रद्धा सोम आदि का उहुति नहीं है, तथापि वेद की आज्ञा ते स्वर्ग लोक आदिकन की अग्नि रूपते और श्रद्धा आदि की आदिकन की अहूति रूपते उपासना कही है। इस रीति से ओम अक्षर की ब्रह्म रूप करके उपासना कही है। तहां ओम अक्षर ब्रह्म रूप नहीं है तो भी ब्रह्म रूप करके उपासना बने हैं। उपासना वाक्य में वस्तु के अभेद की अपेक्षा नहीं किंतु भिन्न वस्तु की भी भिन्न रूप से उपासना होवे है। और विचार ते देखिए तो ब्रह्म का वाचक जो ओम अक्षर है ताका तो अपने वाच्य ब्रह्म ते अभेद बने भी है। घट आदि के अन्य पदार्थन का अपने अपने जड़ रूप अर्थ से अभेद बने नहीं। काहे ते सर्व नाम रूप ब्रह्म में कल्पित है। प्रधान जी सावधान कन करके सुन लो, सर्व नाम रूप ब्रह्म में कल्पित है और ब्रह्म अधिष्ठान है। ब्रह्म सबका अधिष्ठान माने आसरा है, ठीक है। ओम अक्षर भी ब्रह्म का नाम है। ओम अक्षर क्या है? ब्रह्म का नाम है। जानते ब्रह्म में कल्पित है, वो भी ब्रह्म में कल्पित हो गया। ओम अक्षर भी है ना, कल्पित वस्तु की अधिष्ठान से भिन्न, अधिष्ठान से भिन्न होवे नहीं किंतु अधिष्ठान रूप ही होवे है। जानते ओम अक्षर ब्रह्म रूप है और घट आदि के पदन का जो जड़ रूप अपना अर्थ सो अधिष्ठान नहीं है, ठीक है ना। किंतु वाच्य सहित घट आदि के पद ब्रह्म में कल्पित हैं और ब्रह्म तिनका अधिष्ठान है। जानते ब्रह्म से तो सर्व का अभेद बने भी है परंतु घट आदिकन पदन का अपने जड़ रूप वाच्य अर्थ से अभेद किसी रीति से बने नहीं। जानते भट मत में वाच्य वाच्य का अभेद असंगत है और केवल भेद और जो वाच्य वाच्य का अंगीकार करे हैं तिनके मत में जह दोष भट ने कहा है। जो घट पद का वाच्य घट पद अत्यंत भिन्न होवे तो जैसे घट पद से अत्यंत भिन्न वस्त्र रूप अर्थ की प्रतीति होवे नहीं, तैसे घट पद से अत्यंत भिन्न कलश रूप अर्थ की प्रतीति भी नहीं होवेगी। और घट पद से वाच्य को भिन्न मान के ताकि घट पद से प्रतीति मानेंगे तो जैसे घट पद से अत्यंत भिन्न कलश रूप अर्थ की प्रतीति होवे है तैसे अत्यंत भिन्न वस्तु की भी घट से प्रतीति हुई चाहिए। जय दोष भी जो समर्थ अथवा इच्छा रूप शक्ति नहीं माने तिनके मत में है। आप किथे ले आना है, जो पद में समर्थ नहीं मानते जहां शक्ति नहीं मानते उन्हों का खंडन कर रहे हैं, ठीक है ना। जो शक्ति अंगीकार करें तिनके मत में दोष नहीं। काहे ते जो घट पद का वाचे कलश और ताका अवाचे वस्त्र आदि की सो दोनों घट पद से भिन्न है परंतु घट पद से कलश रूप अर्थ के ज्ञान कराने की शक्ति है, अन्य अर्थ के ज्ञान कराने की शक्ति नहीं। अब शक्ति में आ गया, ठीक है ना। जाते घाट पद ते कलश रूप अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होवे नहीं। इस रीति से जहाँ पद से जिस अर्थ की शक्ति है ताही अर्थ की तिस पद से प्रतीति होवे है, अन्य अर्थ की नहीं। जाते वाच्य वाचक से अत्यंत भेद में दोष नहीं, तिनका भेद सहित अभेद रूप तदात्म संबंध बने नहीं। भेद और अभेद आपस में विरोधी हैं, तैसे उपादान कारण का कार्यते भेद सहित अभेद भी केवल भेद है और केवल भेद में जो दोष कहया है सो नैयायिक और शक्तिवादी के मत में नहीं। कहते कारण कार्य के अत्यंत भेद में जह दोष है, जो मृतक पिंड से अत्यंत भिन्न घट की उत्पत्ति होवे तो अत्यंत भिन्न तेल की भी मृत पिंड से उत्पत्ति हुई चाहिए। वो कह रहा है जे घट दा और मिट्टी दा अत्यंत भेद होवे तो फिर तो मिट्टी चो भी तेल निकलना चाहिए। अत्यंत भिन्न तेल की उत्पत्ति नहीं होवेगी, तैसे अत्यंत भिन्न घट की मृत पिंड से उत्पत्ति नहीं हुई चाहिए। जह दोष न्यायिक मत में नहीं है। काहे ते सर्व वस्तु की उत्पत्ति न्यायिक प्राग भाव को कारण माने हैं। प्राग भाव मैंने घट की उत्पत्ति से पहले जो घट का अभाव है उसको की कहांगे प्राग भाव। बन तो पहला घट उत्पन्न नहीं हुआ जी, तो उदा पहला की कहांगे प्राग भाव। मिट्टी तैयार है, घट नहीं तैयार होया, तो की कहांगे मिट्टी दे विच घट का प्राग भाव है, घट तैयार नहीं हुआ। तो जदों घट उत्पन्न हो गया प्राग भाव का नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। न्याय मत बहुत कठिन है ना। जैसे घट की उत्पत्ति में दंड चक्र कुलाल कारण है, तैसे घट का प्राग भाव भी घट का कारण है, बनेगा ही। भी घट में नहीं, मिट्टी में कड़ा नहीं है तो कितों निकल आया? जे मिट्टी में कड़ा ना होंदा तो कितों निकल आया? तो वो कहते जे मिट्टी में कड़ा सी तो फिर घुमियार ने क्यों एवं किया? कहता वो तेन प्रगट कर रहा सी, कड़ा तो पहले ही बैठा से मिट्टी च। न्याय वाले तो फिर तुम पता वखरा ही कम जुगतियां दसते हैं ना। हाँ कहते जे कड़ा मिट्टी च कड़ा सी पहला ही, तो घुमियार फिर ए चक्कर डंड ज घुमा रहा है, वो क्यों घुमा रहा है? कहता वो घड़े न प्रगट कर रहा है। सो घट का प्राग भाव घट के उपादान कारण मृत पिंड में रहे हैं, अन्य में नहीं। तेल का प्राग भाव तिल में रहे हैं, अन्य में नहीं। ऐसे सर्वकार का प्राग भाव अपने अपने उपादान कारण में रहे हैं। तिस जिस पदार्थ में जा का प्राग भाव होवे, तिस पदार्थ से ता की उत्पत्ति होवे है, अन्य की नहीं। जैसे मृत पिंड में घट का प्राग भाव है, जाते मृत पिंड से घट की उत्पत्ति होवे है, तेल की नहीं। तेल का प्राग भाव तिलन में है, तिलन में है रहे हैं, जानते तिलन ते तेल की उत्पत्ति होवे है, घट की नहीं। ऐसे सर्वकार में प्राग भाव कारण है, जानते कारण कार्य अत्यंत भेद मान्यते नहीं है, एकमत में दोष नहीं। और समर्थ रूप शक्तिवादी के मत में दोष नहीं, कहते मृत पिंड में घट की समर्थ रूप शक्ति है, तेल की नहीं। तेलन में तेल की समर्थ है, घट की नहीं। जाते मृत पिंड ते घट की ही उत्पत्ति होवे, तेल की नहीं। तैसे तेल ते तेल की ही उत्पत्ति, तिलन ते तेल की ही उत्पत्ति होवे, घट की नहीं। इस रीति से उपादान कारण का और कार्य कारण अत्यंत भेद मानने में दोष नहीं। अभेदा भेद असंगत है, और भेद में तथा अभेद में जो दोष भट्ट ने कहा है, सो दोनों पक्ष दोष भट्ट के मत में अवश्य रहे हैं। कहते भट्ट ने भेद सहित अभेद अंगीकार किया है, जानते जह अर्थ सिद्ध हुआ। कार्य कारण का भेद भी है और अभेद भी है। भेद है जानते अभेद पक्ष उक्त दोष होवेंगे, और अभेद है जानते अभेद पक्ष में दोष होवेंगे। जैसे चोरी का दोष और द्यूत का दोष जो एक एक करने वाले को कहे हैं, सो दोनों व्यसन जाके होवे, ताको चोर द्यूत दोनों दोष होवे हैं। एक चोरी करने वाला है, एक जुआ खेलने वाला है, और इन्हों के कहेंगे ये चोर है ये जुआरिया है, अजरा दोनों ही करता होवे, उच दोनों दोष आ जाएंगे, है ना। जैसे गुण गुणी आदि कण के भेद अभेद मानने में माने तो भी भेद पक्ष और अभेद पक्ष में दोनों दोष होंगे, और शक्तिवादी के मत में केवल भेद अंगीकार किए थे दोष नहीं। कहे थे गुणी में गुण के धारने की शक्ति है, अन्य की नहीं। जाते भेद पक्ष में जो दोष कहा था घट के रूप आदि की, जैसे घट से भिन्न है तैसे पट आदि की भी घट से भिन्न है। रूप आदिकन की न्यायी पाट आदिक भी घट से रचे चाहिए, अथवा पाट आदिकन की न्यायी रूप आदिक भी नहीं रहे रचे चाहिए। सो दोष शक्ति नहीं अंगीकार करें, ताके मत में केवल भेद मान्यते ही दोष नहीं, उल्टा भट्ट मत में भेद अभेद दोनों मान्यते दोनों पक्ष के दोष उक्त दृष्टांत से हैं। भेद अभेद विरोधी धर्म का असंभव दोष है। असंभव मैंने जो कभी हो ही ना सके। गऊ का किन्ने खुर होंगे बई? गऊ दे जदों देखोगे दो खुर है, और घोड़े का घोड़े का एको खुर होगा, गऊ का खुर जरा बिच में से फटा होगा, और जो घोड़े का खुर गऊ न लग सकता है? नहीं हो सकता, उस कहते असंभव, जो हो ही नहीं सके। तो ऐसे जाति व्यक्ति का और क्रिया क्रियावान का भी केवल भेद है, तथापि व्यक्ति में जाति धारने की शक्ति है और क्रियावान में क्रिया धारने की शक्ति है, अन्य धारने की शक्ति नहीं। इस रीति से उपादान और कारिका तथा गुण गुणी आदिकन का भेद अभेद रूप अतदात्म संबंध असंगत है। सर्व का अपने में भेद मानने में भाटोक्त दोष दोषन को शक्ति ग्रसे हैं। यद्यपि वेदांत सिद्धांत में भी कार्य गुण जाति क्रिया का तदात्म उपादान गुणी व्यक्ति क्रियावान ते अत्यंत भेद नहीं, किंतु तदात्म संबंध ही अंगीकार किया है। तथापि वेदांत मत में भेदा भेद रूप तदात्म नहीं, किंतु भेद और अभेद से विलक्षण अनर्वचनीय रूप तदात्म संबंध है। भेद से विलक्षण है जाते अभेद पक्ष में दोष नहीं, और भेद से अभेद से विलक्षण है जाते भेद पक्ष में दोष नहीं। इस रीति से भेदा भेद से विलक्षण अनर्वचनीय तदात्म संबंध है, परंतु भेदा भेद रूप अत्यंत तदात्म संगत है। जाते वाचे वाचे का भेद अभेद रूप तदात्म संबंध ही शक्ति है। जय भट्ट भट्ट अनुसारी का पक्ष समीचीन नहीं, किंतु पद के सुनते ही ए ठीक सुन लेना, पद के सुनते ही अर्थ के ज्ञान कराने की जो पद में समर्थ सोई पद में शक्ति है। पद सुन दिया ही कोई किस हाँ किसी ने सुनिया कुछ पद उच्चारण किया, वो सुन दिया ही जेड़ा अर्थ बुद्धि दे विच प्रगट होया वो पद दे विच वो अर्थ कराने की शक्ति है। मोबाइल ये पद उच्चारण होया तो मोबाइल पद दे विच इसनू जनाने की शक्ति है, दूसरे नू नहीं, बस यह शक्ति है। उनू समर्थ कह लो चाहे शक्ति कह लो। हाँ जी, अब फिर सुनो, कितनू किंतु पद के सुनते ही अर्थ के ज्ञान कराने की जो पद में समर्थ सोई पद में शक्ति है। इति शक्ति निरूपण शक के लक्षण लक्षणा के। अब जिस वास्ते ने जोर लाया है ना उन्हें, अब उस पक्ष में आ रहे हैं सीधे सीधे पक्ष में। हाँ लक्षणा थे, लक्षणा के ज्ञान में शक का ज्ञान उपयोगी है। जरा लक्षणा का ज्ञान करना तो पहले शक का ज्ञान भी जरूरी है। काहे ते शक के संबंध लक्षणा स्वरूप है, लक्षणा का स्वरूप क्या है, शक के संबंध वाला जड़ी है वो लक्षणा है। पहला शक के अर्थ का पता होगा फिर वो संबंधी का ग्रहण करेंगे। जे शक के अर्थ का पता ही नहीं है तो संबंधी का किसे ग्रहण हो जाएगा। शक के जानने बिना शक के संबंध रूप लक्षणा का ज्ञान होवे नहीं, जाते शक का लक्षण कहे हैं। है पद में जा अर्थ की शक्ति शक सुजान वाचे अर्थ पुन कहत तेहे वाचक पद ही पहचान। अंदे है पद में जा अर्थ की, जिस पद में जिस अर्थ की शक्ति शक सुजान, जिस पद में अर्थ कराने की शक्ति है उसको की कहेंगे शक अर्थ। वाचे अर्थ पुन कहत तेहे उसको वाच्य अर्थ भी कहेंगे, शक्ति अर्थ भी कहेंगे, वाच्य अर्थ भी कहेंगे, मुख अर्थ भी कहेंगे। वाचे पद ही पहचान, वाचक क्या हो गया, वाच्य तो हो गया पद वो अर्थ, और जो पद है वो क्या वाचक। जहां पद में जहां अर्थ की शक्ति होए ता पद का जो अर्थ शक्के जान सो शक्के अर्थ को ही वाच्य अर्थ भी कहे हैं। जैसे अग्नि पद में अंगार रूप अर्थ की शक्ति है, जाते अग्नि पद का अंगार शक्य अर्थ और वाच्य अर्थ कहिए हैं, चाहे शक्य अर्थ कह लो चाहे वाच्य अर्थ कह लो। वाच्य अर्थ का बोधक पद वाचक कहिए हैं, जो वाच्य अर्थ नु जनाने वाला पद हो उसको कहेंगे वाचक। लक्षणा अर्थ और लक्षणा का सामान्य रूप अर्थ लक्षणा और जाति आदि का भेद। अब इसके वास्ते इतना जोर लाया सी उन्हें, अब सही सही पाठ चलेगा। शक्के को संबंध जो स्वरूप जान लक्षण को लक्षणा सुभान जाको लक्ष्य सु पहचानी। कह रहे शक को संबंध जो शक्के अर्थ दे नाल जेदा संबंध होवे ठीक है। छक्के मने मुख अर्थ, मुख अर्थ दे नाल जेदा संबंध होवे स्वरूप जान लक्षण को, ओही लक्षणा का स्वरूप है, ठीक है। हाँ, मुख कह लो चाहे शक्य अर्थ कह लो, शक्ति वृत्ति कह लो, वाच्य अर्थ कह लो, ठीक है ना। लक्षणा सो भान जाको लक्ष्य सुपहचानिए, जिससे भान होया उनकी कहेंगे लक्ष्य अर्थ। शक्य का जितना संबंध है वो हो गया लक्ष्य अर्थ। वाच्य अर्थ सारो त्याग, वाच्य अर्थ का पूरे का त्याग करके वाचको संबंध जहां, वाचक का जहां संबंध होवे, होए प्रतीति तहां जाहती बखानी। अब लक्षणा बता रहे, लक्षणा तीन प्रकार की है, केड़ी केड़ी, जाहती, अजाहती और भाग त्याग। अब जाहती लक्षणा किनू कहिंदे है, वो कह रहे हैं जाहती लक्षणा उनू कहिंदे है जैसे किसी ने तानू पुछया भाई वडभाग सिंह, बाबा वडभाग सिंह स्कूल किथे है, ते तुसी की कहोगे, तुसी कहोगे भी जड़ा रोटी खास तो रोड जांदी है ना हयाणे नू, वो रोड दे उत्ते ही है। ते मुख अर्थ की हो गया, शक्य अर्थ की हो गया, रोड, रोड दे उपर, रोड दे उपर होवेगा ते गड्डियां बसां कित्थों दी निकलणगियां। मुख अर्थ ते की लगेगा उहदा अर्थ, रोड दे उपर है, ते रोड दा मतलब जिहड़े जिथों गड्डियां लंघदियां वह रोड होई ना उहदे उपर, यह हो गया मुख अर्थ। तो फिर तुसी की लगा लक्षणा लगाओगे भी रोड के उपर तो हो नहीं सकता, जे रोड के उपर हो गड्डियां बसा कितों लंघन, फिर तुसी उहदा संबंध केड़ा है। मुख अर्थ की हो गया सड़क, तो उहदा संबंध की हो गया किनारा, किनारे ते होएगा। तो मुख अर्थ का त्याग हो गया और संबंधी का ग्रहण हो गया, इनू कहिंदे जाहती लक्षणा। हाँ, संबंधी का ग्रहण, हाँ। मुख अर्थ क्या हो गया, सड़क, सड़क का त्याग कर दिता, वो किनारे का ग्रहण कर लिया, सड़क का संबंधी क्या है किनारा, तो किनारे का ग्रहण हो गया, इनू कहिंदे जाहती लक्षणा। रोज आप इस्तेमाल, जेड़ा कोई बंदा है फलाना बंदा भी ओदी जितनी जमीन है ना बिल्कुल रोड के उपर है, कह देना बिल्कुल रोड के उपर, रोड के उपर मतलब मुख अर्थ रोड हो गया सड़क, तो फिर सड़क के उत्ते थोड़ी जमीन है, किनारे तो होएगी। तो वाच्य अर्थ की हो गया सड़क, तो जरा लक्ष्य अर्थ हो गया, हो गया संबंधी किनारा, ये होगी जाति लक्षण, ठीक है। वाच्य जुत वाच्य के संबंधी का जहां ज्ञान होए ताही ठोर लक्षणा अजाहती मानिए। अंदर वाच ये पहले ही लक्षणा की सी, वाच्य अर्थ का त्याग करके संबंधी का ग्रहण कर लेना, ये होगी जाहती लक्षणा। और जेड़ी दूसरी लक्षणा अजाहती, वो कहिंदा संबंधी का भी ग्रहण होगा और मुख अर्थ का भी ग्रहण होगा, दोनों का ग्रहण जहां होवे उनू कहांगे अजाहती। चार पंज घोड़े दौड़ रहे हैं, कोई लाल है, कोई हरा है, पीला है, कोई सफेद है, कोई काला है, दौड़ रहे हैं, तो आ सारे देख रहे हैं घोड़ दौड़, तो जड़ा लाल रंग का घोड़ा वो अगे निकल रहा, आप कहे लाल सबसे अगे जाएगा, लाल सारा अगे, लाल अगे जा रहा, तो लाल की होया रंग, रंग थोड़ी अगे दौड़ रहा है, वो रंग जेदा है वह दौड़ रहा है, दोनों का ग्रहण हो गया ना। मुख अर्थ की हो गया रंग लाल, आप मुख अर्थ का प्रयोग करता लाल दौड़ अगे निकल गया, अगे जा रहा, तो लाल मुख अर्थ हो गया लाल, तो लाल के संबंधी है घोड़े का, लाल मुख का भी ग्रहण हो गया और संबंधी का भी ग्रहण हो गया, दोनों का ग्रहण हो गया। ज्ञान तो पहले बच्च भी सी रोड का और रोड के पास किनारे का, पर रोड का अपना त्याग करके किनारे का ग्रहण कर लिया, अब दोनों का ग्रहण हो रहा, लाल का भी ग्रहण होया, लाल रंग जिसका है वह भी घोड़े का घोड़ा भी अजाहती, और संबंधी दे एक मुख अर्थ का त्याग करके संबंधी का ग्रहण कर लेना, उन्हें कहते जाहती अजाहती। अब एक करेगी भाग त्याग, तीसरी भाग त्याग लक्षण है वो सुनो, एक वाच्य भाग त्याग होत जहां भाग त्याग, दूजो नाम जाहती अजाहती मानिए, यही है ना। अंदा जेड़ा तीसरी लक्षण है ना ਉਹ ਕੁਛ ਭਾਗ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਗ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ, ਦੋ ਨਾਮ ਉਹਦੇ, ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕੈਸੇ? ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਹਰਿਦੁਆਰ। ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ? ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਕਿਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ? ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ? ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ? ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ, ਪੁਰਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੁਣ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸ਼ੱਕੇ ਕਹੀਏ ਵਾਚੇ ਅਰਥ ਕਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਕਹੀਏ, ਮਿਲਾਪ ਸੋ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਾ ਸਰੂਪ ਕਹੀਏ, ਲਕਸ਼ਣਾ ਜਾਨ ਔਰ ਜਾਂ ਅਰਥ ਕਾ ਪਦ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਅਰਥ ਕਾ ਪਦ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਤੂ ਲਕਸ਼ਣਾ ਸੇ ਭਾਨ ਕਹੀਏ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਦ ਕਾ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਕਹੀਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਲਕਸ਼ ਅਰਥ। ਕੈਸੇ? ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਖੋਜ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕੂਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਲਕਸ਼ ਅਰਥ। ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਲਕਸ਼ ਅਰਥ।